संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। गाथा 98 पढ़ो, 98।
सुभार से सिद्ध सत जिन का गम सिद्ध है, यह नहीं माने जीव जो वे पर समय पहचानी।
स्वरूप अस्तित्व और सादृश अस्तित्व, इसकी विस्तार से चर्चा करने के बाद अब वो ये कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य अपने में परिपूर्ण है, उसे पर की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है, पर के सहयोग की आवश्यकता नहीं है और पर में सहयोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्वभाव से ही सत है और सिद्ध है। सिद्ध माने मुक्त नहीं, अरहंत सिद्ध वाला सिद्ध नहीं, पराधीनता से मुक्त है। माने ये बात अपन कहते ये सिद्ध है, अपन कहते ये सिद्ध करो। आदि प्रश्न आते हैं ना आपके लक्ष्मण कौमदी वगैरह में और न्याय में भी आते हैं कि इस बात को सिद्ध करो, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि को सिद्ध करो। तो ऐसा है कि हमें आत्मा स्वभाव से ही सब कुछ उसका अस्तित्व है, इसके लिए सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। माने ये बात उसके स्वभाव से ही सिद्ध है। अग्नि गर्म होती है ये सिद्ध करो। हेलो क्या करें, कौन से तर्क दे रहे हैं, कौन सी युक्ति दे रहे हैं? कहते हैं स्वभाव से ही सिद्ध है, अग्नि गर्म है, ये अग्नि का स्वभाव गर्म है, ये स्वभाव से ही सिद्ध है जी। ऐसा अर्थ है, भगवान आत्मा का अस्तित्व स्वभाव से ही सिद्ध है, माने वो है, इसमें कोई शंका की रंच मात्र भी गुंजाइश नहीं है। और दूसरी बात कि वो स्वभाव से सत है, सत है माने उत्पाद वह ध्रुव युक्तम सत है, उसमें उत्पन्न प्रतिक्षण उत्पन्न होना, प्रतिक्षण नष्ट होना और कायम रहना, ये उसका स्वभाव ही है, इसमें भी किसी पर की जरूरत नहीं है। कहेंगे ठीक है, आत्मा के अस्तित्व में तो पर की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके प्रणमन में तो जरूरत है। तो झगड़ा तो सब प्रणमन का ही है, हम में जो परिवर्तन होता है, हम चाहते हैं हम स्वर्ग में चले जाएं, नरक में ना जाएं, अथवा तो इसी भ्रम में थोड़े बहुत अनुकूलता और प्रतिकूलता जो हम चाहते हैं उसी को पर्याय कहते हैं, और उसके लिए हम बहुत लोगों के सहयोग की आकांक्षा रखते हैं और बहुत लोगों को सहयोग देने की भी भावना रखते हैं, कोई पवित्र भाव से नहीं, क्योंकि मेरे बिना जिसका काम नहीं हो तो फिर इसको गुलाम बनाने में सुविधा रहेगी। बस किसी को जरा ये पता लगना चाहिए कि फला आदमी का काम इस बात से अटका है, फिर देखो वो कितना ध्यान देना था। वैसे दिन में 50 साइन करेगा, आएंगे लोग तथा मुझे हस्ताक्षर दे दो, तो बहुत अपने को सौभाग्यशाली समझेगा कि गांधी जी जैसे मेरे हस्ताक्षर भी लिए जाते हैं और कर करके दे जाओ। और जरा उसके मुंह से निकल गया कि वे यूनिवर्सिटी वाले पीछे पड़े हैं कि वो आपके साइन करा के लाओ, नहीं तो हम आपको भर्ती नहीं करेंगे, फिर देखो आखिर में मेरे पर भरोसा करते हैं यूनिवर्सिटी वाले, तो मेरी भी तो कोई ड्यूटी है। तुम्हारा मुझको चाहिए 8 से तुमने क्या किया, कहां पढ़ते थे, कैसे करते, फिर हम दुनिया भर की जांच करेंगे। मैं जरा मालूम पढ़ना चाहिए, और हमारे चित्त में ये बात समा ही है कि बहुत से प्रद्रव्यों के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, इसलिए स्वभाव से ही अनंत गुलामी हमने स्वीकार कर ली है। क्या? क्योंकि हमने जो ये माना, कल मैंने कहा था ना आपको कि आप मेरे बिना दुनिया का काम नहीं चल सकता, वो मूर्ख है। और जो ये कहता है कि मैं दुनिया के बिना अपना काम चला लूंगा, वो महामूर्ख है। मूर्ख तो ठीक है, कहेंगे कि जो ये कहता मेरे बिना दुनिया का काम नहीं चल सकता, लेकिन मेरा दुनिया के बिना मैं अपना काम चला लूंगा, ये तो महाबुद्धिमान है। मूर्ख क्यों है? क्योंकि वस्तु के स्वभाव में अपने आप में वो परिपूर्ण है। इतर के तुम्हारे ख्याल में आएगा नहीं बात क्या कह रहा हूं मैं? हम सोचने का एक अलग ही तरीका तो हो सकता है ना। जितने भी हमने देखे, जो नेमी और राजुल को जिन्होंने प्रस्तुत किया और वैराग्य लेके चले गए, तो जितने लोगों ने समझाया राजुल को, तो यही कहा गया और लड़का मिल जाएगा, कोई कमी है क्या दूसरों की, तो उससे शादी कर देंगे। और उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता है, क्या ये तो मेरा तो बस नेम ही नहीं है, मैं तो जो वो करेंगे वो ही मैं करेंगे, क्योंकि पतु की अनुगामिनी पत्नी को बनना चाहिए, वो मोक्ष जाने के लिए दीक्षा नहीं लेती है। पर पति अनुसार पत्नी नहीं लेते तो वो भी नहीं लेती, पति लड्डू खाते तो वो भी लड्डू खा लेती, क्यों ऐसा नहीं हो सकता सीता जी जैसा कि पति घर में बैठे रहे और छोड़ के वो दीक्षा ले जाए? कुछ केस ऐसे भी होने चाहिए ना कि पत्नी दीक्षा ले गई इसलिए पति उसे प्रेरणा पाके दीक्षा ले गया है? ये पत्नी ही क्यों इतना अनुकरण करें? यानी ऐसा नहीं हम सोच सकते हैं कि भगवान ऋषभदेव ने ये बता दिया था कि मारीच का जीव महावीर होगा और इसकी मां का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ होगा। यानी ये बात आदिनाथ भगवान के जमाने में ही नक्की थी क्या कि वो त्रिशला की शादी सिद्धार्थ से होगी? इसमें इन्हें कुछ करना था? वो नक्की था ना पहले से ही। तो महावीर तो बहुत बाद के हुए, नेमिनाथ तो उसके पहले के हुए, तो नेमिनाथ का क्या होगा वो भी तो उनके ज्ञान में आया होगा कि नहीं आया होगा है? उन ऋषभदेव के, मैं अजितनाथ के, संभवनाथ के, अभिनंदन नाथ के, यानी इसके पहले जो 21 तीर्थंकर हो गए हैं, उन सबके ज्ञान में ये बात आई होगी कि नहीं आई होगी? और भी जितने केवली हुए हैं, सब जितने भी केवल ज्ञानी हैं और जितने भी अरहंत तो सिद्ध हैं, उन सबके ज्ञान में ये बात आई होगी कि नहीं, कि उसके विरुद्ध हुआ है कुछ? और फिर राजुल की शादी जिससे होनी होगी उससे होगी, वो भी आई होगी, होगी कि नहीं होगी, क्या होगा, वो सारी चीज जो उनके केवल ज्ञान में आया होगा वो ही होगा ना। तो ये सहज ये कुछ नया और अद्भुत नहीं हुआ है, ऐसा ही होना अनादि से नक्की था, इस लेन पे नहीं समझाया जा सकता है। क्यों? कि बेटी यहां वहां कान खोजने से कोई जरूरत नहीं है कि श्री किसी ने क्या षड्यंत्र किया, किसी ने क्या किया पशुओं के मन में, इतनी सी इतनी बड़ी बातें शांति जी जैसे सारा विश्व पलट सकता है, वो इतनी इतनी छोटी छोटी बातों के लिए हो जाएंगी। जैसे अपन कहते हैं ना कि अपना भोजन से जीवन चलता है, अपन मनुष्य भव में यदि दिन में एक दफा शांति से भोजन नहीं करेंगे तो अपना जीवन जितनी आयु है उतना तक जिंदा नहीं रहेगा, ऐसा होता है ना। इस सहज बात मैं कोई विरोध करने के लिए नहीं कह रहा हूं, अपनी ऐसी मान्यता है ना। तो किसी आदमी के सहज भाव से कुछ भी कह देने से कसाय बस मैं भोजन छोड़ दूंगा, क्यों क्यों छोड़ दूंगा? मेरा मतलब समझे ना कि सारे जीवन भर मनुष्य गति का ऐसा ही स्वरूप है। वो जो है ना कि नरकों में भोजन बिन जीवन, भरपेट मनुष्य क्यों मरता है, और वो सिद्ध भी आज तक अनंत सुखी हैं, मैंने भोजन से दे दुखी नहीं होते, वो एक त्रैकालिक तत्व है, परम सत्य है। और ये एक क्षणिक क्षणिक मान पर्यायगत सत्य है कि मनुष्य जीवन में साधारण शुद्ध सात्विक भोजन के बिना ये जीवन नहीं चलता है। लिमिटेड समय चल जाए, महीना दो महीना पंद्रह दिन कितने भी दिन हो, वो लेकिन आखिरकार जीवन का सहज चलना इस आहार ग्रहण के साथ ही होता है। ये परम सत्य नहीं है, भले क्षणिक पर्याय के लिए ही बाध्य हो है। तो मेरे कहने का मतलब किसी के जरा से भी कहने से सारी दुनिया बदल जाएगी है? माने हमारा निमित्तों की तरफ ही ध्यान क्यों जाता है कि किसने कहा खज पता लगाओ, रिसर्च बैठा दो, खोजो किसकी चालाकी है, ये किसने पशु यहां बांधे थे, कि नहीं साहब किसकी आज्ञा से बांधे थे, उसको क्या उद्देश्य था, क्यों इसकी जरूरत है। दुनिया तो दुनिया करती रहती थी, उसके मन के में विकल्प आता है, अपने हिसाब से जो भी करना होता करता रहता है, तो उसके हिसाब से ही थोड़ी सारी दुनिया परिवर्तित हो जाती है। मैं ऐसा भी पढ़ा है कि महाभारत के युद्ध में नेमिनाथ गए थे और उनने वहां लड़ा था, लड़ाई में शामिल हुए थे, माने किसी युद्ध में भी वो गए हैं, मेरे कहने का मतलब है। तो युद्ध में उनने हिंसा नहीं देखी होगी, सैनी पंचमी आदमी मरते हुए नहीं देखे होंगे, और आदमी के स्वास्थ्य के कारण ये सब कुछ हो रहा है, क्यों ये उनकी समझ में उधर नहीं आई, उधर भी आ सकती थी, लेकिन नहीं थी उपादान की पात्रता। किसी भी केवल ज्ञानी ने वैसा उनके वैराग्य को नहीं देखा था, पर ऐसा ही देखा था। विचित्रता तो इस बात की है कि हमारी पर्यायों में जो उत्तरोत्तर विकास होता है, विकास कहो विकार कहो जो भी कहना है, वो उसमें अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का एक व्यवस्थित सिलसिला होता है। समझ में आएगी नहीं क्या कहा मैंने, किसकी समझ में आई, जरा हाथ उठाओ, दो चार ही हाथ उठ रहे हैं, जिनकी नहीं आई वो सारे, कोई घबराना नहीं, मैं कोई परीक्षा मरी चल लेने वाला नहीं हूं, और तुम पास हो जाओगे तो पुरस्कार देने वाला भी नहीं, क्यों समझ में है? तुम पढ़ रहे हो, विद्वान हो, तो सवाई समझ में आने ही चाहिए, नहीं समझ में आई है अपात्रता है, समझ में आई उसमें काहे की इच्छा बची है, वो तो हमारा कान है ना। तो मेरे कहने का अर्थ है कि हम किसी के निमित्त की खोज क्यों करें कहीं ना कहीं। मैंने ये भी देखा कि तिल्लोय पन्नति में ये लिखा है कि नेमिनाथ भगवान के निमित्त वैराग्य का निमित्त जाते समय था, ये नाम ही नहीं लिखा, बोलो क्या कर। तिल्लोय पन्नति में 24 तीर्थंकरों के शांति जी वो गिनाए हैं कि किसमें किस निमित्त से वैराग्य हुआ, तो ऋषभदेव का नीलांजना का बताया, किसी का बताया कि भाई बिजली चमकती हुई देखी तो उससे हो गया, किसी को किसी से, और फिर किसी को जात स्मरण से हो गया, तो नेमिनाथ का नंबर उसमें जात स्मरण वालों में आता है, और जात स्मरण हर एक कोई होता है, होता है माने दीक्षा के काल में जिनको आदिनाथ को दादा वो हुआ ना नीलांजना की मृत्यु से, तो बाद में जात स्मरण उन्हें भी हुआ, और जात स्मरण में उनके 9 भाव आ जाते हैं तो 9 भाव दिखाई दे जाते हैं, तो 9 भावों का वर्णन हर पंच कल्याणक में हमारे प्रतिष्ठाचार्य कहते हैं इसका मतलब यह है कि उनने उस वक्त तो कम से कम जाते समय से जाने, तो उससे क्या होता है, जाते समय में क्या होता है, संसार के जो विचित्र उतार चढ़ाव है ना, वे उनके जीवन में पूरब भ्रम में हुए थे, वे ख्याल में आ जाते हैं और उसी से देखकर वो क्षणभंगुरता उनके ध्यान में आ जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इतनी बड़ा तत्व, इतना बड़ा तथ्य कि सब कुछ सुनिश्चित है और अनंत केवली भगवानों ने उसे जाना है, इस महासत्य के आधार पर किसी समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता है क्या? ये कुछ काम का है कि नहीं? क्या कह रहा हूं मैं, ये जो हमने महासत्य समझा है कि ये बिल्कुल बेकार ही है, इसकी जरूरत ही नहीं थी। हमारी सुबह से शाम तक की जो समस्याएं हैं, क्यों उन समस्याओं का समाधान, समाधान क्या करना, क्या चाहिए, समाधान क्या चाहिए, कि हमारी इच्छा के अनुकूल कुछ नहीं हो रहा है तो ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अब कल से गड़बड़ नहीं हो गए, अब कल से बिल्कुल सही होना चाहिए, ये सब यही तो समस्या है हमारी, क्यों? और समाधान है कि आकुलता क्यों करता है? ये तो अनंत काल पहले निश्चित है कि आज क्या होगा और कल क्या होगा, वो वैसी के अनुसार ही हो रहा है, क्यों? कुछ थोड़ी बहुत चित्त में शांति इस तत्व ज्ञान से भी आ सकती है कि नहीं आ सकती है? आश्चर्य तो क्या है कि वो अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों के का सिलसिला यहां ऐसा विचित्र था कि अभी तो शादी के योग जो अनंत पूर्ववर्ती पर्याय थी ना, वे हो रही थी, तो श्री कृष्ण ने प्रस्ताव रखा नैनी से कि तुम्हारी राजन से शादी कर देते हैं, तो चुपचाप मुस्कुरा करके यहां कर दी। ये काय के लक्षण है, शादी नहीं करने के, करने के? ये अनंत पूर्ववर्ती पर्यायों का जो सिलसिला है वो काय का है? फिर सज धज के जो भी घोड़े हाथी तो जैसे रथ में जैसे भी बैठे होंगे, बैठ के तैयार होके चल दिए बरात लेकर के, सारी लोगों को कार मार भी छपे होंगे, जो भी व्यवस्था हुई होगी ये सब उनकी आंखों के सामने उनने नहीं देखा होगा, तो उस वक्त उनके भावों में जो विकास हुआ होगा, वो शादी करने के रूप भावों का हुआ होगा कि नहीं करने रूप भावों का? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, अब मैं उन भावों का चित्रण करना चाहता हूं, मैं उन पर एक किताब लिखना चाहता हूं, समझ लो एक किताब में चार छंद लिखना चाहता हूं, जितना भी ये क्या कि वे अभी जब घोड़े पर बैठ गए और रास्ते में जा रहे तो क्या सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे कि दरवाजे तक पहुंच जाऊं फिर छोड़ छाड़ के भग जाऊंगा। उनके भावों का देखो, बहुत मरम की बात है, मेरे को तो जरा मनोरंजन पूर्वक हंसी पूर्वक कहने की आदत है जिससे कि आपका मन लगा रहे, लेकिन वो तत्व आपके अंदर में पहुंचना चाहिए कि मैं जिसकी तरफ आपका ध्यान दिला रहा हूं, माने उनका निरंतर परिणामों का विकास, के आपको क्या जरूरत पड़ गई कि ये जरूरत पड़ गई कि मैं लिखना चाहता हूं, क्यों? क्योंकि अभी ये प्रश्न आएगा, राजुल नहीं करेगी तो राजुल का बाप करेगा, राजुल का बाप नहीं करेगा तो भी गांव वाले करेंगे, कोई ना कोई तो करेंगे ही, कि तुम्हें शादी नहीं करने थी तो घोड़े पे क्यों बैठे, क्यों दरवाजे तक आए, दूसरे का पता नहीं था, दूसरे का भी ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें अकेले इज्जत वाले नहीं हो, दूसरों की भी इज्जत है, क्यों? ये सब प्रश्न करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसा छल तुमने क्यों किया? ऐसा सोचने वाले लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो अपन सोचें कि उनने छल किया क्या? छल कब माना जाता कि जब उनके मन में पहले से ही होता कि चलो अपन घोड़े पे बैठ के दरवाजे तक जाएंगे और फिर छोड़ के भग जाएंगे, जैसा भाव पवन जय को आया था, देखो तुम सच्चे विद्यार्थी हो गए मेरे, है? पहले से पकड़ लेते हो जो 5 साल तुमने सुना है,
उसके आधार पर तुम्हें पकड़ लेते हो ना, क्योंकि उनको ये विकल्प आया था कि अच्छा मैं इसकी शादी नहीं करूंगा तो दूसरे से कर लेगी, मंजे के गुलसल दे उड़ाएगी, मैं ही रोता रहूंगा, इसलिए मैं शादी करूंगा और फिर छोड़ दूंगा, विद प्लानिंग, ऐसा भाव था उनके चित्त में। नेमिनाथ का तो ऐसा था नहीं, उन्हें जब तक जो भी जो जब उन्हें बैराग हुआ, मैं बार बार ये नहीं कहना चाहता हूं कि पशुओं की चीत्कार सुनी, क्रंदन सुना, मैं उसको इतना महत्व नहीं देना चाहता हूं। क्या जिस समय इसे उनके परिणाम बदले और दीक्षा लेने के हुए, तो एक एक बिंदु तो होगा, समझना क्या कह रहा हूं मैं, कि जो पहले तो करने के भाव थे, उधर निरंतर रस परिपाक हो रहा था और इधर अब उल्टी मार वो चलने लग गई, तो ऐसा बहुत कम होता है। लाखों जो जो जीव हैं जो शादी के लिए जाते हैं तो उनके शादी के ही परिपाक होता रहता है और शादी हो जाती है, जिंदगी भर रहते हैं। जिनके बैराग्य का होता है वे शादी की बात ही पसंद नहीं करते हैं, घर वाले चर्चा करते हैं तो वो भी उन्हें पसंद नहीं आती है, बराबर निषेध करते रहते हैं। माने अनंतर पूर्ववर्ती परिणामों का सिलसिला जैसा अनुरूप सारे जगत में होता है, अनुकूल और अनुरूप, वैसा नेमिनाथ के साथ नहीं घटा। तो ऐसी घटनाएं जब जब घटती हैं तो वो उनका एक विचित्र स्वरूप होता है और इसीलिए वो विचार की वस्तु बन जाती हैं। क्या नहीं हो सकता, एक समय पहले शादी करने का पक्का विचार हो और एक समय बाद शादी नहीं करने का विचार पक्का हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता क्या? होने का तो उदाहरण अपने पास है ही ना, है? हो सकता है ना, ये वस्तु के स्वरूप के विरुद्ध तो नहीं है। जनरल तो वैसा ही होता है क्या, कि करने के वे एक करने 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 का होता है, नहीं करने वालों का नहीं करने करने का होता है। लेकिन ऐसे भी केस हो सकते हैं जो एक क्षण में बदल जाए, और हमारे तो ऐसे शास्त्रों में बहुत उदाहरण भरे पड़े हैं। हाथी पर लड़ाई लड़ रहे थे, बाण पर बाण चला रहे थे और वहीं बैराग हो गया। श्वेतांबरों के यहां तो बैराग होके छपक छानी मार के और हाथी पे बैठे ही बैठे केवल ज्ञान हो जाता है। ऐसा हुआ है कहानियों में, अपने यहां तो नहीं हो सकता, लेकिन अपने यहां भाव तो बदल सकता है, चिंतन तो बदल सकता है। फिर उसकी जो पूरी प्रक्रिया होगी, वो हाथी पे से उतरेंगे, जाएंगे, बैठेंगे, चिंतन करेंगे, महाराज के पास जाएंगे, दीक्षा लेंगे, स्वयं दीक्षा लेंगे, जो भी होना होगा वो पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है। अब वो जो टर्निंग पॉइंट जहां होता है, समझ रहे हैं ना, उस वक्त जो सामने होता है उसको निमित्त कह दिया जाता है। निमित्त की ये पोजीशन है, बिजली चमक रही हो तो क्या, बिजली चमकने से हो गया, क्यों बादल गरज रहे हो तो बादल गरजने से हो गया है। यदि अपना एक आज सफेद बाल हो गया हो और वो हमारे ज्ञान का गेय बन जाए तो हम उससे ही काम निपटा सकते हैं। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जठरपन अस उपदेशा। ये कहां की बात है, कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, ये छंद किसका है? ये तुलसीदास जी की रामायण का छंद है। और जब दशरथ को राम को राज तिलक कर रहे थे ना, उसके पहले की घटना है कि वे दर्पण के सामने बैठे और उस दर्पण में उन्हें अपना एक सफेद बाल दिखाई दिया और उनने ये विचार किया कि अब मैं बुढ़ा होने जा रहा हूं, तो मुझे ये सारे राजपाट से व्यक्त लेकर दीक्षा ले लेनी चाहिए, अपने आत्मा के कल्याण में लगना चाहिए। तो उन्होंने सोचा भाई राम को राज दे दें, अब वो सारी घटना घटी। यहां वो टर्निंग पॉइंट था किसका, ये एक सफेद बाल देखा था। यदि सफेद बालों के देखने से वैराग होता है तो हमारे तो सभी हो गए, पर रोज ही ना देखते हैं, कुछ होता ही नहीं, कुछ तो होना चाहिए थोड़ा बहुत। उन्हें एक बाल देखने से हो गया था ना, अरे उनकी काललब्धि आ गई थी, उन्हें होना था तो और कुछ नहीं था, उस सामने वो हमारा समझ दर्पण था, तो वो दर्पण क्या भी कह सकते हैं, दर्पण देखने से वैराग हो गया ये भी कह सकते हैं ना, बाल ही किसे क्यों कह रहे हैं, दर्पण देखने से वैराग हो गया। निमित्त तो ये है कि वो जो टर्निंग प्वाइंट होगा हमारे उपादान में, उस वक्त जो चीज उपस्थित होगी उसी को निमित्त के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। वहां लिखा है कि जातस्नान से हुआ, यहां लिखा है कि इस घटना से हुआ, क्या फर्क है। जब वो जातस्नान हुआ उन आचार्य का ध्यान वहां पर गया जिनने वो लिखा, और दूसरे जरा थोड़े पीछे चले गए कि जब उन्होंने वो क्या हाथी घोड़ा या रथ क्या मुड़वाया था। पंच कल्याणकों में एक मैं हर पंच कल्याणक में कहता हूं जो नवीनाथ के होते हैं कि भैया ये बारात आई और नवीनाथ को बैराग हुआ और उन्होंने सारथी से कहा तो रथ को मोड़ दिया, ऐसा आता ना घटना, रथ को मोड़ दिया। तो मैं कह बैराग्य का निमित्त जो भी घटना हुई वो तो सिर्फ इतनी हुई कि रथ को मोड़ दिया, क्या और हमने कितनी लंबाई कि वो रथ वहां गेट से भी आ सकता है, इतनी दूर से पंडाल का जो गेट हो ना वहां से वो रथ चले है और स्टेज के पास तक आए, वो जैसा वो मोड़ के बनाते हैं ऐसा मुड़ जाए, बनाते ही आता ही है। फिर उसको हमने बाजार में ले गए, बारात को बाजार से लेकर के राजुल के बाप के घर तक ले गए, फिर वहां बाप चाहिए तो बाप बनाया, क्योंकि लाखों रुपया उससे मिलते हैं, ऐसी बेटी का बाप कौन बनना चाहेगा, अगर उसे लाख दो लाख रुपया देवे तो भी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे मिलते जैसे आभागी कि जिसका ऐसा हो जाने वाला है। मैं सच कहता हूं मुझे बहुत दुख होता है कहते हुए भी और देखते हुए भी कि उस दिन एक दीक्षा कल्याणक का जुलूस भी होता है, तो ये सुबह बारात निकलने का जुलूस इतना बड़ा हो जाता है राग रंग में रास्ते में, मालूम बारात का स्वागत होता है, लड्डू खिलाए जाते हैं, जगह जगह चाय पानी होता है, खड़े खड़े बैठे बैठे आप सुनिए ना, वो सारा दिन बारात खा जाती है, फिर जब दीक्षा लेने की बात आती है तो कोई रहता ही नहीं है दीक्षा में जाने के लिए। वो दीक्षा कल्याणक का सबसे असली दिन वो दीक्षा कल्याणक का है, बारात बारात तो उसके निमित्त के रूप में आई थी, क्यों बारात नाम का तो कोई कल्याणक होता ही नहीं, सारी नाम का तो कोई कल्याणक होता ही नहीं है, है? लेकिन मैं ये कहता हूं कि सिर्फ उतना सा टर्निंग प्वाइंट था निमित्त, तो निमित्त को भी ज्ञान कराना है तो कराओ, लेकिन इतनी लंबी बारात की क्या जरूरत है। लेकिन हमको तो बारात दिखाने के लिए नवीनाथ का पंच कल्याणक करते हैं, नहीं तो हम आदिनाथ का करते क्या है? हमको वो जुलूस हम बहुत बढ़िया बनाएंगे है? मेरे कहने का मतलब उग्रसेन ये भी तो कह सकते थे कि बेटी ये घटना भगवान के ज्ञान में अनंत काल पहले ही आ गई होगी, वो तो हमें उतना पता नहीं था, तो हमको ऐसा पता लगता है कि नेमिनाथ को ऐसा ऐसा होगा और इस पर एकदम उनको वैराग्य हो जाएगा, इस टाइम पर पांच संवाद होंगे ना तो उसमें वो काल लब्धि भी आएगी, क्या होगा वैराग्य होगा, तो एक कार्य भी आएगा, होनहार, ये होनहार हुई ना, तो होनहार भी होगी, स्वभाव भी होगा, काल लब्धि होगी, और जो भी पांच संवाद है ना, और उसमें एक निमित्त भी होगा, उन पांच में एक होगा ना। लेकिन ये कितना, इसको इतना तूल हमने क्यों दे दिया? हमको काल लब्धि आ गई थी, होनहार उनकी ऐसी थी। मैं तो बालबोध पाठमालाओं में लिखा है, तुमने पढ़ा होगा, तो कि वो कहती है कि बहुत बुरा हुआ। क्या तुमने याद है संवाद लिखा? मैंने उस वक्त लिखा था करीब आज से 40-45 साल पहले, सन 68-69 में, 70 होगा बस खत्म, इससे ज्यादा नहीं। कितने वर्ष हो गए? इतने वर्ष पहले लिखा था। क्या लिखा था उसमें? कि वो कहते कि बहुत बुरा हुआ। कि क्या बुरा हुआ? कि बारात लौट गई। तो उसने लिखा, क्या बात करता है, राग से बैराग की तरफ जाना बुरा होना है कि अच्छा होना? क्या हम जो कह रहे हैं, उन बच्चों को हमने ये सिखाया, तुमने पढ़ी होगी वो बालबोध पाठमाला है, कि राग से बैराग की तरफ जाना ये अच्छा होना है कि बुरा होना है? कि नहीं, वो राजुल के हिसाब से तो बुरा ही हुआ। क्यों? शादी हो जाती तो बहुत अच्छा रहता ना। कितने दिन की? 56 दिन बाद तो नेमिनाथ को केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान की डेट तो फिक्स ही थी, और उसके बाद उनकी दिव्य ध्वनि खड़ी होगी, तो कितने जिनों का आत्मकल्याण हुआ, द्वारका वालों को सब सुनने को मिला कि द्वारका जल जाएगी, और जो भी होगा, और जितनों को बैराग का निमित्त बना, तो 56 दिन की सदवा तो हो सकती, एक दिन तो पहले दीक्षा लेनी ही पड़ती। क्या वो भी कितने दिन के लिए होता? यानी एक प्रश्न वहां उस वक्त उठाए कि बच्चों का दिमाग क्यों खराब करते हो? अच्छा करते कि खराब? क्यों एक दिमाग खराब कर रहे हैं बच्चों का? क्या अच्छा कर रहे हैं? कि बुरा क्या हुआ? कभी बेचारी राजुल ने भी दीक्षा ले ली, कौन सा बुरा काम कर लिया? दीक्षा ले ली तो क्या हुआ? अच्छा किया था? ये तो सब होना चाहिए ना। तो हम, मेरे कहने का मतलब, ये जो कुछ हुआ उसे बहुत अच्छे के रूप में क्यों नहीं देख सकते? और ऐसा ही होना न सुनिश्चित था, इसके रूप में हम क्यों नहीं देख सकते हैं? हमने इतने इतने इसके बारे में गोष्ठियां की, विचार किए, तत्व किए, प्रवचन सुने, अब जिंदगी भर प्रवचन करना है, जगह जगह जाके क्रम प्रयास समझानी है, ये धंधा मिला है ना। तो अभी हमारे चित्त में कोई भी घटना को लेकर उधर हमारा विकल्प जाल क्यों नहीं बढ़ता है? बुरा हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था, इधर ही क्यों हमारा दिमाग बढ़ता है? और वो उनका बहुत गड़बड़ है, और उन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया, अच्छा है, अब क्या करें? हम ज्यादा कह नहीं सकते हैं क्योंकि अभी बहुमत काय को माथे पे बोझा डाल रहा है। वो जरा से निमित्त की बात है ना, किसकी उपेक्षा हो रही है? क्यों समझ गया ना? मैंने चार संवादों को तो स्वीकार कर रहे हैं ना, कि वो तो नक्की था, किसी भी केवल ज्ञानी से जाकर के उसे बहुत गहराई से पूछा जा सकता था। इस गाथा में देखिए दो बातें नक्की हैं, कौन कौन सी बोलो, हाथ उठाओ जल्दी, कौन बताएगा? बोलो। दिव्य स्वभाव से सत है, और वो स्वभाव से ही सिद्ध भी है। सिद्ध माने सिद्ध नहीं, ये बात सिद्ध है कि दिव्य स्वभाव से ही ऐसा है, उत्पाद व ध्रुव युक्त से सत है, और उसका सत स्वभाव है। इन दो चीजों के लिए किसी दूसरी चीज की आवश्यकता रंच मात्र भी नहीं है। पढ़ो इसकी टीका पढ़े आप हैं। इस गाथा का भाव तत्व प्रदीप का टीका में आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। टीकाएं लंबी लंबी जरूर हैं लेकिन कठिन नहीं है। नहीं तो अमृतचंद्र की टीकाएं तो बहुत कठिन होती हैं, उनका अर्थ समझना कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। वस्तुतः बात यह है कि द्रव्यों से किसी अन्य द्रव्य का आरंभ नहीं होता। क्या मतलब इसका? नया द्रव्य दुनिया में कोई बनता नहीं है। कि द्रव्यों से नए द्रव्य का आरंभ नहीं होता। जैसे है ना, ये मनुष्य पर्याय में है ना, तो बाप से बेटे, बेटे से फिर बाप, फिर उसके बेटा, बेटा तो हुआ ना, एक मनुष्य से दूसरा, दूसरे से दूसरा है? कि वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है, दो सिलसिले हैं। देखो अपने अपने दो हैं, एक तो ये कि अपन जिस गति से आए हैं, फिर वहां किस गति से गए थे, फिर वहां किस गति से गए थे, फिर वहां कहां से वहां गए थे, समझ गए ना। ऐसे सात पीढ़ी पुरानी और सात पीढ़ी आगे की, कि यहां से मर के कहां जाएंगे, तो वहां से मर के कहां जाएंगे, यहां से मर के कहां जाएंगे, ऐसी एक परंपरा तो ऐसी है। और एक परंपरा ऐसी है कि हमारे बाप, बाप के बाप, बाप के बाप, बाप वो सात पीढ़ी पहले जो हमारे दादाजी थे, उनके बेटे वो, उनके बेटे वे, उनके बेटे भी एक में, तो अपन केंद्र में आ गए। जो एक वो लाइन ऐसी जा रही है अलग, और ए लाइन ऐसी जा रही है अपनी। अब ये जो बीच का मुद्दा पड़ गया है, जो दोनों एक साथ हैं, तो अपनी अपनी सात पीढ़ी की वंशावली बनानी है। क्यों? वंश वृक्ष बनाते हैं ना, घरों में लगाते हैं, तो कैसी बनाते हैं? कि हम हमारे बाप से आए, हमारे बाप ये, हमारे बाप ये, हमारी, तो ये तो वैसी है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से होता है, वो ये ना लिखा ना। और है तो हमारी असली, तो हम ऐसी है, हम जो जाएंगे वो अपने बेटे में नहीं जाएंगे, बेटे के बेटे में नहीं जाएंगे, बेटे के बेटे में नहीं जाएंगे, प्रवर्तन समझ आई ना। हम जाएंगे वो हमारी परंपरा उधर जाएगी। इसलिए जैन धर्म में पीढ़ियों को महत्व नहीं दिया, भवों को महत्व दिया। बात तो नौ भव की तो करेंगे, पीढ़ी तीन भी नहीं बताएंगे। बड़े बड़े लोगों की, महावीर के पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ के पिताजी का नाम क्या था? खत्म। टाइम टाइम फिस है ना, आगे का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि उनके बेटा तो था ही नहीं। माने हमारा जो जैन धर्म का जो नेचर है वो कैसा है, देखो वो शरीर की पीढ़ी को महत्व तो नहीं देता। हमारे बाप से हमें क्या लेना देना है, और बाप के बाप से क्या लेना देना, और उनके बाप से हमें क्या लेना देना, क्यों? लेकिन हमारे पिछले भव से हमारा लेना देना है, उसके पिछले भव से हमारा लेना देना है। हमारा इस देह में से एकत्व टूटेगा और आत्मा में एकत्व आएगा, तो उसमें से एक चिन्ह प्रकट होना चाहिए हम में क्या नहीं, कि हमारा ध्यान भवों पे जाए, पीढ़ियों पे नहीं। क्यों? कहां जाना चाहिए? हम सात पीढ़ी के, फलानी पीढ़ी के, पीढ़ियों की हालत तो तुम देख रहे हो, पुराणों में पढ़ो, कोई तीन पीढ़ी से ज्यादा कहीं कोई चलती दिखती ही नहीं। पुराणों को छोड़ दो, अभी बताओ ना कोई का, टोडरमल जी के बताओ, किसी के ही बताओ ना, कोई दिखती है तुम्हारी कोई पीढ़ियां? पीढ़ियां एक आध पंडित को पकड़ के लाओ जिसकी सात पीढ़ियां तुम बता दो, आगामी नहीं पूरी पुरानी। क्यों? आगामी तो हो नहीं हो, लेकिन पुरानी तो होती ही है ना, उसके बिना तो काम होता ही नहीं है ना, लेकिन पता ही नहीं चलता कि टोल रमन जी के पिताजी का जोगी राजी कहां थे, उनके पिताजी कहां थे, वो उनके पिताजी कहां थे, उनको ही पता नहीं, आगे चलता ही नहीं है बिल्कुल पता। उन्हें लिखा देता था, लिख दिया बस, जोगी राज नहीं था, अपन को वही पता नहीं चलता क्या की जरूरत क्या है। देखो है कहां है वस्तु तो बात यह है, द्रव्यों में से किसी अन्य द्रव्य का आरंभ नहीं होता, क्योंकि सभी द्रव्य स्वभाव से ही सिद्ध हैं, माने स्वभाव से सिद्ध हैं। इसमें मालूम क्या बात ध्वनित कहना चाहते हैं, वो कहते हैं अनादि से, क्योंकि ऊपर कह रहे ना कि कभी एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का आरंभ नहीं होता, तो आरंभ नहीं होने में क्या कारण है, क्योंकि अनादि निधन होने से सभी द्रव्यों का स्वभाव सिद्धत्व सिद्ध ही है। मतलब समझेंगे ना, अनादि अनंत है, इसलिए सवाल ही नहीं होता कब से होगा या किससे पैदा हुआ। ईश्वर बाद में सारे प्रश्न इसी मुद्दे पर खड़े होते हैं कि भगवान ने यदि दुनिया बनाई है तो वो सामग्री पहले से थी कि वो सामग्री भी उनने बनाई। मैंने भाई सोने से हार बनाता ना वो सुनार, तो ऐसा ऐसी बनाई है कि बिल्कुल नई, एकदम कुछ नहीं था, और फिर ऐसा किया और एकदम यहां राजमहल बन गया। क्यों, कैसी बनाई, तो सामग्री थी। तो फिर उसका सवाल है कि सामग्री कहां से आई थी, वह सामग्री किसने बनाई थी, दुनिया में वह सामग्री शामिल है कि नहीं है। दुनिया में तो सामग्री भी हो गई ना, वो मटेरियल भी तो बनाया होगा ना किसी ने, तो ये उसका कोई अनादि के अलावा कोई जवाब नहीं है, और अनंत के अलावा भी कोई जवाब नहीं है कि कब खत्म हो जाएगी। जी कह रहे वो 12 वर्ष बाद द्वारका जल के खत्म हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल साफ हो जाएगी द्वारका 12 वर्ष बाद। अरे वो तो द्वारका का एक आकार है, ये जो द्वारका का स्पेस है ना, वो तो अनंत काल तक रहेगा, वो नहीं रहेगा। मतलब मेरे कहने का कि आकाश थोड़ी खत्म होता, अनादि अनंत है, देखा ना अनादि निधन, ये निधन लिखा, निधन माने तो मरना होता है, अनादि अनधन, ये जो आ शब्द है वो दोनों में लगाया है, और व्याकरण का ये नियम है दोनों शब्दों को एक कर दो और सबसे पहले एक दफे लगा लो तो दोनों में लग जाता है। क्या तो अनादि निधन में से क्या निकलता है, अनादि और अनिधन। क्या सिद्धि, क्योंकि अनादि निधन पदार्थ अन्य साधन की अपेक्षा नहीं रखते। अब अनादि निधन पदार्थ अन्य साधन की अपेक्षा नहीं रखते माने अपनी उत्पत्ति के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, उसके लिए कि सब कैसे बने, कैसे बने, ये आत्मा बना कैसे है, यदि ये अब शरीर मनुष्य शरीर तो कहते हैं नहीं, पुद्गल के परमाणु हैं, और डॉक्टर से पूछो तो इसमें कई तत्व बताएंगे, वो यही तत्व होते हैं, ये तत्व होते हैं, ये सब मिलकर के बना है, तो आत्मा कैसे बना, तो कहते अनादि जो चीज होती है उसमें कैसे बनी का सवाल नहीं है, अनंत काल तक कनस्थ होकर कहां जाएगी इसका कोई सवाल नहीं है। सभी पदार्थ मूल साधन के रूप में अपने गुण पर्यायात्मक स्वभाव के कारण स्वयमेव सिद्ध हैं। मन गुण और पर्याय उत्पाद व द्रव्य ये सब चीजें सहज हैं, सिद्ध हैं, और इन्हीं को सत बोलते हैं। तो प्रत्येक द्रव्य सत है कि सब सिद्ध करो कि प्रत्येक द्रव्य सत है। सत है का मतलब क्या है, अब हम दो दफे सत सत बोल रहे हैं, प्रत्येक द्रव्य है ऐसे बोलना चाहिए कि सत माने तो है होता है, सत का है का अर्थ क्या है मालूम, सत माने है और है माने है और है, तीन है। फिर कोई सूत्र ऐसा बनाओ कि पहले इस है को था हो जाता है, दूसरे है को है रहता है, तीसरे है को गा हो जाता है, जब बोलते ना है गुरुदेव बोलते हैं छे छे और छे, मैंने तीन काल में उसका अस्तित्व है, तो भूतकाल में उसके अस्तित्व को हम था बोलते हैं, भविष्य काल में उसके अस्तित्व को हम गा बोलते हैं, लेकिन वो तो है, बस वस्तु है। जो द्रव्यों से उत्पन्न होते हैं वे अन्य द्रव्य द्रव्यांतर नहीं है, सदा नहीं होने से कभी कभी होने से वे अणुक आदि व मनुष्यादि पर्यायों के समान पर्याय हैं, क्योंकि द्रव्य तो निरपदि त्रिकाली होने से उत्पन्न ही नहीं होते। क्या नहीं, तुम कहते उत्पन्न ही नहीं होते, हम तो उत्पन्न होते देखे हैं कि देखे होंगे, तो तुम्हारी बात झूठी नहीं, हमारी बात झूठी नहीं होगी। वे जो तुमने उत्पन्न होती देखी हैं वे पर्याय होंगी, फिर उन पर्यायों के उदाहरण क्या के दिए उनने, द्वि अणुक और मनुष्य। देखो वो पर्याय नहीं दी, मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान, कौन सी पर्याय हैं ये, समान जाति असमान द्रव्य पर्याय। द्रव्य पर्यायों को दिया कि जो तुम बदलते देखते हो ऐसा, वो तो ये है स्कंद का आकार बदलता है, हम बात परमाणु की कर रहे तुम स्कंद की कर रहे, हम बात आत्मा की कर रहे और तुम मनुष्य की कर रहे, कि वो जो तुमने बदलते देखा है वो द्रव्य नहीं है, पर्याय हैं। हम जो कह रहे हैं कि कभी नहीं बदलते, वो हम द्रव्य की बात कर रहे हैं, है ना। द्रव्य जिस प्रकार स्वभाव से सिद्ध है, मैंने उसे सिद्ध करने की किसी दूसरे तरह की जरूरत नहीं है, उसी प्रकार वह स्वभाव से ही सत्य भी है, मैंने उसे उत्पाद व ध्रुव में उसमें है, और उत्पाद व ध्रुव का मतलब ही क्या होता है कि वो उत्पन्न होना, नष्ट होना और कायम रहना, तो ये तीन चीजें भी कैसे होती हैं, ये कैसे होंगी, तो फिर कभी होंगी कभी नहीं होंगी, फिर वे कादाचित होंगी, लेकिन ये तो निरंतर है, उत्पाद व ध्रुव भी प्रत्येक वस्तु में निरंतर है, इसलिए ये उसका स्वभाव है। उत्पाद वे द्रव्य पर्याय नहीं है, ये द्रव्य का स्वभाव है जो स्वतः ही सिद्ध है, माने उनके होने में और उनके होने में किसी पर की जरूरत नहीं है, ये दो होने कैसे आ गए। हाँ, ये एक उनके अस्तित्व होने में और एक उनको सिद्ध होने में, ये दो ही बातें चल रही ना, सिद्ध और सत्य, ये दोनों ही स्वभाव से हैं, यानी तुम पूछना मत कि वो कैसे होंगी, ये आत्मा इतना बुद्धिमान कैसे हो गया, कैसे हो गया, क्यों ये केवल ज्ञान कैसे हो गया इस आत्मा को, क्यों कि वो ये ज्ञानावनी कर्म था ना, उसकी कुटाई पिटाई करी भाग गया, रे हो गया केवल ज्ञान, क्यों ज्ञानावनी कर्म के छह से हो गया। गुरुदेव तो बहुत बोलते हैं कि ज्ञानावनी कर्म के छह से केवल ज्ञान नहीं होता, तो क्या होता है कि जब केवल ज्ञान होता है तो कर्म में जो कारमान परिणाएं ज्ञानावनी कर्म के रूप में परिणमित थी वे मिटकर साधारण बनना के रूप में हो जाती हैं, कैसे ना, तो उन्हें आत्मा कर देता होगा ना, कि नहीं आत्मा कुछ नहीं करता, कि उनका ऐसा उनका स्वभाव है, हम क्या करें। जब ये यहां केवल ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान कैसे होगा, बोलो भगवान आत्मा में एक सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति है ना, इससे होगा, उसमें सर्वज्ञ होने की शक्ति त्रिकाल है, सर्वज्ञ शक्ति का और क्या मतलब है, क्योंकि मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान ये पर्याय तो ज्ञान ज्ञान गुण शक्ति की कहलाएंगी, गुण रूप शक्ति तो वो है, और ये सर्वज्ञत्व शक्ति कौन कैसी शक्ति है, त्रिकाल तो है लेकिन कैसी, गुण रूप है, धर्म रूप है कि पर्याय रूप है, ये वो कहना स्वभाव रूप है, समझ में आ गया ना, क्योंकि गुण रूप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसकी पर्याय नहीं होती, धर्म रूप, इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि असर्वज्ञत्व नाम की कोई शक्ति नहीं है, प्रतिद्वंदी नहीं है, ख्याल में आई ना, तो सवाल है। त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति के समान, ऐसा सवाल है, हो जाता है। नहीं, केवल ज्ञान रूप प्रणमित होना भी स्वभाव तो हो क्यों नहीं रहा कि स्वसमय में है? उसके साथ है ना कि स्वसमय उसका काल आएगा तो हो जाएगा, उसका स्वभाव है स्वसमय में वैसा ही प्रणमित होना, वो सब स्वभाव था। यानी एक कहकर कि मैं भी नाथ गुना भी दीक्षा हो गई, अब केवल ज्ञान हो जाएगा, 56 दिन बाद फिर जी हो जाएगा, जी हो जाएगा, ये सब अनादिकाल से क्यों जान लिया था? ऋषभ देव ने कैसे जान लिया था? क्योंकि उनके उनके स्वभाव वो था और वो आज भी है वास्तव में, तो नहीं तभी कैसे जान लेते? होगा रूप है ना, समझ में है ना, बेचारे ऋषभ देव को तो मुफ्त में ही ले लिया है, नहीं तो अनंत धंगरों की बात है कि ये कोड़ा कोड़ी सागर पहले जान लिया, ये कोड़ा कोड़ी सागर में ही हमारा माथा हिलने लगता है तो अनंत सागर के पहले तो बहुत घबराएगा। जानने को हम कुछ भी कह सकते, अजितनाथ ने जान लिया था, संभवनाथ ने जान लिया था, कहां जाना था, कोई उदाहरण है? हम कहां पुराण खोलते फिरे, वो एक है ना हमारे पास, क्यों आदिनाथ जिनने वो मरीज के लिए कहा था कि ये महावीर होगा, समझ, हमारा काम चल गया, हम उसी से चलाएंगे क्या? लेकिन तभी जाना था, तब नक्की हो गया था, तब से नक्की है साहब, कब से? आदिनाथ के जमाने से, ये बात सच्ची है। हाँ, वो तो अनादि से नक्की है। कैसी विचित्र बात है वस्तु का स्वरूप। तीन काल के जितने समय हैं, अनादि से और अनंत काल तक के, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते क्या? तीन काल के जितने समय हैं, प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक गुण की उतनी पर्याय हैं। ये शास्त्र आगे आसाएंगे ना, और एक एक समय में एक एक पर्याय गुथी हुई है कि जो कभी उससे अलग नहीं हो सकती। इस स्वरूप वस्तु का स्वरूप ही है ना, अब क्यों मत पर्याय समझाने की जरूरत रहेगी? यदि ये वस्तु का स्वरूप समझ में आ जाए परमात्म, एक एक समय में एक एक पर्याय, एक एक जीव की, एक एक गुण की, अब जिस समय हम जिस पर्याय को नहीं होने देंगे तो वो समय खाली हो जाएगा, हम जो लाएंगे तो जो उस वक्त होनी है उसका क्या होगा? अब नैमिनाथ को चौथे गुण स्थान से और एक घंटे के भीतर ही छठवां सातवां गुण स्थान होना है, तो क्या कौन रोके उसे, कौन लाए? थोड़ा अपने समझाएं, समझदार लोग हों तो भी 2-5 साल के लिए रुक जाए, क्यों? तो क्या करें, वो गुणस्थान को क्या रखें? वो जो छठवें गुणस्थान में उनकी होने वाली उनकी जो वो पर्याय प्रकट है वो तो तैयार करी है, वो कैसे हिल सकती है? विचार करो आप गंभीरता से, मैं ये कहता हूं ये किसी से कोई दबाव नहीं है, किसी का कोई लेना देना नहीं है, कांजी सोनी का क्या लेना देना है इससे, हमारा और तुम्हारा भी क्या लेना देना, वस्तु का स्वरूप है और तुम हो और जनागम है, थोड़ी बहुत हेल्प लेनी हो तो ये शास्त्र है जो भगवान की दिव्य ध्वनि से आए हुए हैं, इसमें किसी की मुरव्वत का क्या सवाल है? हमारी ये समझ में ये बात आ जाए तो कोई हां करे, कोई ना करे, कोई हमको ये बताए कि नहीं ये बात सच्ची है, हम तो समझते नहीं हैं, तो हम जाकर के उनसे पूछेंगे तो भी हमसे बता देंगे कि हां सच्ची है, तो हम सच्ची मान लेंगे, तो वही उसी लेन पे गए ना तुम, क्यों? हमारी उम्र क्या है वो हमको एक मूर्ख लिख के देगा? जब हम पैदा हुए थे तब वो पैदा भी नहीं हुआ था, क्या उसका बाप का बाप का बाप था. अब वो एक ऑफिसर आईएएस बन के आ जाता है और लगा के सील लिख के देखता है कि हम इतने वर्ष के हैं, वो बताएगा वो दुनिया ये मानेंगे और हम बता रहे थे नहीं मानेंगे, हम सामने खड़े हैं तो नहीं मानेंगे. क्यों है? क्यों आप ये आप सिद्ध करो, ये प्रमाणित करा के लाओ कहीं से कि तुम बुढ़े हो. अरे तेरे सामने खड़े हैं ना किसने प्रमाणित करा? तो तुम इस वस्तु के स्वरूप को किससे प्रमाणित कराओगे? तुम सबसे बड़े ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर, तुम प्रमाणित करो, तुम्हारे लिए तुम प्रमाणित करो तो काम आएगा. दूसरा प्रमाणित करेगा तो कोई नहीं आएगा. यदि तुम्हें दूसरे के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता हो तो ये अपना जिनागम है, आगम है और कुछ नहीं है. बिल्कुल सही समझना, बिल्कुल पक्की बात है. हम तुम तो इसलिए हैं कि हम इस आगम के अनुसार बोल रहे हैं. आगम के अनुसार हम नहीं बोले तो एक सेकंड में रिजेक्ट कर देने लायक हैं. कोई मुरव्वत मत रखना कि हमको पांच साल पढ़ाया कि हमको ये दिखाया कि ये सुविधा दिलाई, कुछ नहीं. ये वस्तु के स्वरूप में रंच मात्र भी नहीं है. ये दिनेंद्र भगवान की जो वाणी अपने पास है, कुंद कुंद की ये समय सार वाणी है, अमृतचंद की ये वाणी है, ये जो है बस इसके अनुसार है तो है, सब है, और नहीं है तो नहीं है. बस खत्म. हमारी सबसे बड़ी कसौटी, यदि कोई सहयोग को परद्रव्य को कहीं खड़ा करना है, मैं नहीं कह रहा हूं वो सम्मा दर्शन की जो पांच लब्धियां हैं ना, फिर प्राप्त करने के पहले होती हैं, उसमें चार तो उपादान है और सिर्फ एक देशना लब्धि के रूप में इस जनागम है. किसी की बात प्रमाण नहीं होती है, घबराना नहीं. बात सर्वज्ञ की प्रमाण है और आगम सर्वज्ञ की वाणी है, इसलिए प्रमाण है. और बाकी के लोगों की आचार उपाध्याय साधु विद्वान सम्यक दृष्टि, इन सब की बात उनके उस वाणी के अनुरूप होने से उन सब की प्रमाणित है. ये मार्ग है अपने जैन दर्शन में. इसीलिए तो कुंद कुंद भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं, जिने ही निर्दिठम भणिदाखल सभ्य दर्शी ही. ये बात सर्वज्ञ भगवान ने कही है. ये वो कहते हैं ना कि सर्वज्ञ भगवान ने जानी है. यदि वो खुद ही को प्रमाणिक मानते होते तो सर्वज्ञ की साक्षी क्यों देते? क्या हम जब ये कहते हैं अपने यहां तो अपने बंद कर दिया. क्या वो इतना लंबा एक पेज का मंगलाचरण बोला जाता था मानो? हाँ, कैसे मूल ग्रंथ करता रहा तो उत्तर ग्रंथ करता रहा तो सर्वज्ञ देवा भी मर दिया. अब मैंने बंद कर दिया, तुमने क्यों कर दिया? मैंने तो मैं बोल नहीं सकता ज्यादा. वो दो लेने भी मुझे भारी पड़ती हैं, वो चार लेने भी बोल सकता हूं मैं. मंगलाचरण की दो ही क्यों बोलता हूं, चार भी बोल सकता हूं. है ना कितनी लेने, तुमने देखी ना महावीर वंदना है, ये सर उन्हीं में से तो है. लेकिन मैं गाकर वश करके नहीं बोल सकता हूं, मेरा गला खुलता नहीं है. शांति से गद्य में जैसी दो वाले ने बोल के अपनी बात शुरू कर देता हूं, तो मेरी जैसी तुम्हें करने की जरूरत नहीं है. तुम बोल सकते हो तो अच्छी तरह शांति से वो बोलो पूरा मंगलाचरण, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा. आप क्या ख्याल में ना? अब मैं तुमको गाथा भी ढंग से नहीं सुना सकता हूं, कलश भी नहीं सुना सकता हूं, उनका पद्यानुवाद भी नहीं सुना सकता हूं. लिख सकता हूं लेकिन सुना नहीं सकता हूं. मैं लिखता हूं फिर तुम मुझे बुलाता हूं, बोलो बेटा पढ़ो बेटा, उनसे तुमसे सुनता हूं. क्या कि ये ठीक है कि नहीं है, कहीं इसमें अटकाव तो नहीं है? क्यों तुम इसमें मेरी कमजोरी है तो इसको मुझको आदर्श बनाने की जरूरत नहीं है. और दुर्भाग्य से तुम में ही कमजोरी हो जाओ तुम बना लेना, क्या दिक्कत है? माने हमारा कोई विरोध मरोध किसी से नहीं है, ना उस पुरानी परंपरा से है. खूब शांति से बोले हम तो उदाहरण देते हैं, हम तो सर्वज्ञ देवा तत्तर ग्रंथकर्ता गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषाम वचनानुसार महासाध्य आचार्य श्री कुंद कुंदे आमना ये पंडित टोडरमल्लेन विचरतम इदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम ध्येयम है ना। हम तो याद में आज तो सब है, कोई याद करने की समस्या नहीं है, है? क्या बोले चक्षु ढूंढ मिल तम ए तस्मय श्री गुरु हो न क्या कहते क्या किया ज्ञान अंजन सला गया, ज्ञान रूपी अंजन से सलाई से लगाया और मेरी आंखें जिसने खोल दी उस गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। मैंने धर्म के दर्शन किताब में लिखा है कि आज के मैं वो कहता है कौन जादूगर कि ये नजरबंदी का खेल दिखाऊंगा मैं आपको। क्या अब भी हाल इस सड़क पर सीमेंट कंक्रीट की सड़क पर एक आम का पेड़ उगाता है और उसमें बढ़िया बढ़िया फल लग जाते हैं और लो तुम्हें तोड़ के लाके तुम्हें दिखाता है, देता नहीं, तुम खा नहीं सकते उसे, वो दिखा सकता है, हैं? तो और कहता भैया ये नजरबंदी का खेल है, मैंने आपकी नजर बंद की है क्यों, और उसे धड़ाधड़ सौ सौ के हजार हजार के नोट वहां पड़ जाते हैं, वहां लाख रुपया इकट्ठे करके और लेके चल देता है। कौन कौन जिसने तुम्हारी नजर बंद की थी वो, और जिसने खोली उसकी कोई सुनता ही नहीं है। लगा हमारे तो हम ये कहते हैं कि हम तो उन गुरुओं के नमस्कार करते हैं कि जिनने हमारी नजर खोल दी। चक्षुरुन मील तम ये तस्मयी श्री गुरु हे नमः, यानी आंख खोलने वाले की कीमत होना चाहिए निमित्त के रूप में। तो हमारा जो जनागम है जो हमारी आंखें खोलता है और हमको बराबर यदि सहयोग लेना है तो इसका, नहीं तो अपना भगवान आत्मा सबसे महान है।
इस दुषम भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है। हमें यदि और किसी की सहायता की जरूरत है हर चीज के लिए तो जिनवाणी शास्त्र हमारे पास में है। समय सार की प्रतियोगिता कर्ताक्रम अधिकार पर मुख्य रूप से आधारित जो बहुत दिनों से विलंबित है वह आज रात्रि के प्रवचन के बाद यहां संपन्न होगी। अभी चार छात्रों के नाम हमारे पास आए हैं शास्त्री द्वितीय तृतीय वर्ष से, और कोई छात्र उसमें सम्मिलित होना चाहे तो आ सकता है। और हम सब भी कर्ताक्रम अधिकार के विषय को एक बार पुनः